नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पीटर एच डायमंडिस और स्टीवन कोटलर की पुस्तक द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक, निकट भविष्य व्यवसाय और समाज पर केंद्रित प्रौद्योगिकी विमर्श की पुस्तक है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी एक नई तकनीक का परिचय देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि कई तेजी से विकसित होती तकनीकें जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो परिवर्तन की गति और प्रभाव दोनों बढ़ जाते हैं। लेखक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल बायोलॉजी, सेंसर, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन और तेज वैश्विक नेटवर्कों के संयुक्त प्रभाव पर विचार करते हैं। पुस्तक का स्वर स्पष्टतः भविष्य केंद्रित और आशावादी है, फिर भी इसका व्यावहारिक प्रश्न महत्वपूर्ण है। संस्थाएं और व्यक्ति इतने तेज बदलाव के लिए कैसे तैयार हों? परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, वित्त, खुदरा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के माध्यम से लेखक बताते हैं कि पुरानी उद्योग सीमाएं कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए यह पुस्तक भविष्यवाणी की सूची से अधिक तकनीकी प्रतिच्छेदों को पहचानने और उनके आर्थिक तथा सामाजिक परिणामों पर सोचने का ढांचा प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तकनीकी अभिसरण परिवर्तन को रैखिक नहीं गुणात्मक रूप से तेज बनाता है। पुस्तक का केंद्रीय विचार तकनीकी अभिसरण है। लेखक कहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल बायोलॉजी, सेंसर और नेटवर्क जैसी तकनीकों को अलग अलग प्रवृत्तियों की तरह देखना पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब पैदा होता है जब ये एक दूसरे की क्षमता बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए, बेहतर सेंसर अधिक डेटा जुटाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस डेटा में पैटर्न पहचानती है, तेज नेटवर्क उसे तुरंत साझा करते हैं और रोबोटिक प्रणालियां उसके आधार पर भौतिक काम कर सकती हैं। इस श्रृंखला में हर घटक दूसरे की उपयोगिता बढ़ाता है। यही कारण है कि लेखक आने वाले वर्षों में बदलाव को केवल तेज नहीं बल्कि संरचनात्मक मानते हैं। यह दृष्टि व्यवसायों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा केवल उसी क्षेत्र की कंपनियों से नहीं आती जिसमें कोई संस्था काम करती है। एक स्वास्थ्य कंपनी को सॉफ्टवेयर, जीनोमिक्स, निदान उपकरण और डेटा मंचों के मेल से चुनौती मिल सकती है। पुस्तक का तर्क यह नहीं कि हर तकनीकी दावा तुरंत सच होगा, बल्कि यह है कि विश्लेषण की इकाई किसी एक आविष्कार के बजाय उनका संयोजन होना चाहिए। इसी बिंदु पर यह पुस्तक साधारण तकनीकी रुझान विवरणों से अलग दिखाई देती है। दूसरा, घातांकीय सोच धीमे अनुमान की आदत को चुनौती देती है। लेखक जिस घातांकीय सोच की बात करते हैं, उसका संबंध भविष्य को लेकर अंधविश्वासी उत्साह से नहीं बल्कि परिवर्तन की दर को समझने से है। मानव अनुभव सामान्यतः क्रमिक बदलाव का आदि है, इसलिए लोग अक्सर किसी तकनीक की वर्तमान सीमाओं को देखकर उसके अगले कुछ वर्षों के प्रभाव का अनुमान लगाते हैं। लेकिन जब कंप्यूटिंग, डेटा संग्रह, कनेक्टिविटी और स्वचालन एक साथ सुधरते हैं, तो शुरुआती धीमी प्रगति अचानक व्यापक उपयोग में बदल सकती है। पुस्तक पाठक को यह देखने के लिए कहती है कि लागत घटने, क्षमता बढ़ने और पहुंच फैलने की प्रक्रियाएं कब एक दूसरे को मजबूत कर रही हैं। इस दृष्टि का व्यावहारिक अर्थ है कि नेता केवल वर्तमान बाजार आकार या मौजूदा ग्राहक व्यवहार पर निर्भर न रहे। उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि कौन सी बाधा जल्द, सस्ती, स्वचालित या डिजिटल हो सकती है। फिर भी घातांकीय सोच को निश्चित भविष्यवाणी समझना गलत होगा। कानून, सामाजिक स्वीकृति, अवसंरचना, ऊर्जा और सुरक्षा जैसी बाधाएं अपनाने की गति बदल सकती हैं। पुस्तक का उपयोगी सबक यही है कि रैखिक अनुमान अक्सर अपर्याप्त होते हैं, पर विवेकपूर्ण तैयारी के लिए तकनीकी क्षमता के साथ संस्थागत सीमाओं को भी देखना आवश्यक है। तीसरा, परिवहन और खुदरा में उत्पाद से सेवा आधारित प्रणालियों की ओर बदलाव। पुस्तक परिवहन और खुदरा जैसे परिचित क्षेत्रों का उपयोग यह दिखाने के लिए करती है कि अभिसरण उपभोक्ता अनुभव और उद्योग संरचना दोनों को बदल सकता है। परिवहन में स्वायत्त प्रणालियां, इलेक्ट्रिक वाहन, सेंसर, मैपिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साझा उपयोग के मॉडल मिलकर वाहन स्वामित्व की पारंपरिक धारणा पर दबाव डालते हैं। यदि यात्रा अधिक सुरक्षित, सस्ती और मांग के अनुसार उपलब्ध सेवा बनती है, तो बीमा, पार्किंग, लॉजिस्टिक्स, ईंधन और शहरी नियोजन पर भी असर पड़ता है। लेखक का ध्यान केवल चालक रहित कारों पर नहीं बल्कि इन द्वितीयक प्रभावों की श्रृंखला पर है। खुदरा में भी डेटा, मोबाइल संपर्क, स्वचालित आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल भुगतान और त्वरित डिलीवरी का मेल खरीदारी को अधिक व्यक्तिगत और तत्काल बना सकता है। इससे दुकानों की भूमिका समाप्त होना अनिवार्य नहीं, लेकिन उन्हें अनुभव वितरण केंद्र या स्थानीय सेवा बिंदु के रूप में बदलना पड़ सकता है। इस विश्लेषण की ताकत यह है कि यह तकनीक को अलग उत्पाद के रूप में नहीं देखता। यह पूछता है कि जब सुविधा, सूचना और वितरण एक ही व्यवस्था में जुड़ते हैं, तो मूल्य कहां बनता है। व्यवसायों के लिए संकेत है कि उन्हें अपने मूल उत्पाद के साथ ग्राहक तक पहुंचने वाली पूरी प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। चौथा, स्वास्थ्य। भोजन और शिक्षा में व्यक्तिगतकरण का आधार डेटा और जीव विज्ञान है। स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा के बारे में पुस्तक का दृष्टिकोण व्यक्तिगतकरण की बढ़ती संभावना पर आधारित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सेंसर, बड़े पैमाने के जैविक डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत निदान उपकरण मिलकर रोग का पता लक्षण गंभीर होने के बाद लगाने के बजाय पहले लगाने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेखक इसे अधिक पूर्वानुमान आधारित निवारक और व्यक्ति केंद्रित देखभाल की संभावित राह के रूप में देखते हैं। भोजन में डिजिटल बायोलॉजी, स्वचालन और नई उत्पादन विधियां आपूर्ति, पोषण और संसाधन उपयोग की समस्याओं को बदल सकती हैं। शिक्षा में वर्चुअल परिवेश, अनुकूली सॉफ्टवेयर और सर्वव्यापी कनेक्टिविटी सीखने की गति तथा सामग्री को विद्यार्थी की जरूरत के अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन पुस्तक के इन उदाहरणों को समझते समय पहुंच का प्रश्न अनिवार्य है। डेटा की गुणवत्ता, गोपनीयता, शिक्षक और चिकित्सक की भूमिका, नियमन तथा डिजिटल अवसंरचना तय करेंगे कि लाभ कितनी समानता से बढ़ते हैं। अतः लेखक की तकनीकी संभावना को सामाजिक परिणाम मान लेना उचित नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवाएं एक समान मॉडल से हटकर अधिक मापी हुई और प्रत्युत्तरशील हो सकती हैं, बशर्ते संस्थाएं भरोसे, सुरक्षा और सार्वजनिक पहुंच की व्यवस्था भी विकसित करें। अंत में, उद्योगों की सीमाएं धुंधली होने पर रणनीति को अवसर और जोखिम दोनों गिनने होंगे। द फ्यूचर इज फास्टर देन यू थिंक का व्यावसायिक संदेश यह है कि स्थापित उद्योगों की सीमाएं स्थिर नहीं रहेंगी। जब कोई तकनीकी मंच डेटा, भुगतान, संचार, स्वचालन और वितरण को एक साथ जोड़ता है तो वह कई क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है। इसलिए किसी कंपनी की रणनीति केवल अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों और पिछले प्रदर्शन पर आधारित नहीं हो सकती। उसे समीपवर्ती तकनीकों, उभरते मंचों, नए नियामकीय ढांचों और ग्राहक की बदलती अपेक्षाओं पर नजर रखनी होगी। लेखक इस वातावरण में उद्यमियों के लिए अवसर देखते हैं, क्योंकि छोटी टीमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल डिजाइन, वैश्विक नेटवर्क और स्वचालित उपकरणों के सहारे बड़े पैमाने तक पहुंच सकती है। साथ ही यह संभावना रोजगार विस्थापन, निगरानी, डेटा केंद्रित शक्ति और असमान पहुंच जैसे जोखिमों को भी जन्म देती है। पुस्तक का प्रमुख झुकाव अवसरों की ओर है, इसलिए पाठक को इसके दावों को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए। फिर भी इसका रणनीतिक योगदान मूल्यवान है। यह निर्णयकर्ताओं को किसी नवाचार के प्रत्यक्ष उपयोग से आगे बढ़कर उसके दूसरे और तीसरे क्रम के परिणाम देखने के लिए प्रेरित करती है। तैयारी का अर्थ हर तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि संगठन की कौन सी धारणाएं तकनीकी मेल के कारण जल्दी अप्रासंगिक हो सकती हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उद्यमियों, कॉरपोरेट नेताओं, नीति निर्माताओं, निवेशकों, शिक्षकों और उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो उभरती तकनीकों को अलग अलग समाचारों के बजाय एक संयुक्त परिवर्तन शक्ति के रूप में समझना चाहते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ किसी निश्चित भविष्यवाणी को मान लेना नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रश्नों की गुणवत्ता सुधारना है। पाठक यह पूछना सीख सकता है कि कौन सी तकनीकें एक दूसरे को सक्षम बना रही हैं, लागत और पहुंच में बदलाव किस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, और किसी नवाचार के अप्रत्यक्ष परिणाम क्या हो सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर पुस्तक रैखिक प्रगति की सहज धारणा को चुनौती देती है और बताती है कि तकनीकी परिवर्तन अक्सर कई परस्पर निर्भर सुधारों का परिणाम होता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में एक तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ब्लॉकचेन को केंद्र बनाया जाता है। डायमंडिस और कोटलर की विशिष्टता इन तकनीकों के बीच टकराव और सहयोग को मुख्य विषय बनाना है। परिवहन से लेकर स्वास्थ्य और भोजन तक वे उद्योगों को एक साझा अभिसरण ढांचे में रखते हैं। हालांकि पुस्तक का आशावादी स्वर पाठक से सावधानी मांगता है, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता, नियमन, असमानता और सुरक्षा परिणामों को बदल सकते हैं। फिर भी यह निकट भविष्य पर विचार करने के लिए व्यापक, सुलभ और व्यवसायिक केंद्रित नक्शा देती है। इसे सबसे बेहतर ढंग से एक विचारोत्तेजक मार्गदर्शिका की तरह पढ़ना चाहिए, न कि अपरिवर्तनीय समय सारणी की तरह। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पीटर एच डियामानिस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।